समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी सुनने वालों का स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर और ये है न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आज का ये अंक आप सुनेंगे देवेंद्र त्रिपाठी और तन्वी खुराना के साथ। गुड मॉर्निंग तन्वी।
गुड मॉर्निंग देवेंद्र एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, देवेंद्र हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस नेक्स्ट हाफ एन आवर इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर हियर विद यू विद डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। एंड बिकॉज टूडे इज सैटरडे, सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरी वन हैप्पी सैटरडे एंड अ वेरी हैप्पी वीकेंड। होप यू एंजॉय दिस वीकेंड लाइक यू हैव नेवर डन इट बिफोर, सो पार्टी हार्ड एंड एंजॉय हार्ड। लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस, शैल वी?
जी तन्वी।
Voting is underway for the 7th and final phase of Lok Sabha elections. 57 Lok Sabha constituencies spread across 7 states and 1 union territory are going to poll in this phase. These include 13 seats each in Uttar Pradesh and Punjab, 9 seats in West Bengal, 8 in Bihar, 6 in Odisha, 4 in Himachal Pradesh, 3 seats in Jharkhand and 1 seat in Chandigarh. Over 10 crore 60 lakh electors will decide the fate of 904 contestants in the fray. Polling for the remaining 42 assembly constituencies of Odisha is also taking place. The voting began at 7 a.m. and will continue till 6 p.m. Elaborate arrangements have been made by the Election Commission to ensure smooth and transparent voting. Election officers have been instructed to implement measures to mitigate the challenges posed by scorching temperatures, safeguarding the health and well-being of voters and poll officials. BJP President JP Nadda has said Congress's decision to not participate in exit polls is an unequivocal confirmation that the Congress has conceded the 2024 Lok Sabha elections. He added that instead of focusing on winning the election, Congress repeatedly approached the Supreme Court, making outrageous demands in order to mutilate the well-established electoral process.
असम में बाढ़ के कारण 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। रेमल चक्रवात के बाद लगातार बारिश हो रही है जिसके कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से 11 जिलों में लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कई जिलों में बाढ़ के पानी से कई सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ है। बाढ़ प्रभावित जिलों में 148 राहत शिविर और 39 राहत वितरण केन्द्र तैयार किए गए हैं। बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात रिमल के बाद असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक आपदाओं पर चिंता व्यक्त की है। श्री मोदी ने वर्तमान स्थिति का जायजा लिया और राज्यों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं।
India's real GDP is estimated to grow by 8.2% in the financial year 2023-2024 as compared to the growth rate of 7% registered in financial year 2022-23. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, real GDP or GDP at constant prices is estimated to attain level of over 173 lakh crore rupees in the year 2023-24. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that this remarkable GDP growth rate is the highest among the major economies of the world. Prime Minister Narendra Modi has said that the GDP growth data for 2023-24 shows robust momentum in the Indian economy, which is poised to further accelerate. BJP President JP Nadda said this remarkable milestone stands as a testament to the success of Prime Minister Modi's transformative policies and the tireless dedication of Indian diligent citizens who have propelled India to unprecedented levels of progress and prosperity.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे के ध्यान पर हैं। श्री मोदी आज अपना ध्यान पूरा करेंगे और तिरुवल्लूर की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे तिरुवनंतपुरम लौटेंगे और फिर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से गजा में संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक नए इजरायली प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। तीन हिस्सों का यह प्रस्ताव 6 सप्ताह के युद्ध विराम के साथ शुरू होगा, जिसमें इजरायली रक्षा बल गजा के आबादी वाले इलाकों से हट जाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि घातक संघर्ष को खत्म करने की शुरूआत करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में जोर देकर कहा कि सभी बंधकों की वापसी और हमास की सैन्य और हमारी क्षमताओं के खत्म होने तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। दक्षिण अफ्रीका पहली बार राष्ट्रीय गठबंधन सरकार की ओर बढ़ रहा है। आंशिक चुनाव नतीजों में सत्तारूढ़ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को बहुमत से काफी पीछे रहना पड़ा है। बुधवार को हुए चुनावों में देश के 9 प्रांतों में 90% से अधिक वोटों की गिनती के बाद एएनसी को केवल 41% वोट मिले हैं।
If we talk about sports in boxing, World Championships bronze medalist Nishant Dev has become the first Indian male to qualify for the 2024 Paris Olympic Games. Nishant booked the Paris Olympic ticket after defeating Moldova's Vasil Sebotari in a unanimous 5-0 decision in the men's 71-kilogram category quarterfinal at the World Boxing Qualifiers in Bangkok yesterday. He's the fourth Indian pugilist to qualify for the Paris Olympics after 3 women boxers, Nikhat Zareen, Preeti, and Tokyo Olympics bronze medalist Lovlina Borgohain. He is currently the only Indian male boxer to make it through to the Summer Games.
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI विश्व मुक्केबाजी संघ का सदस्य बनने पर सहमत हो गया है। सदस्यता के आवेदन को BFI की आमसभा ने अनुमोदित कर दिया है और अब विश्व मुक्केबाजी संघ के कार्यकारी बोर्ड द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी। BFI के अध्यक्ष अजय सिंह ने हाल ही में विश्व मुक्केबाजी के अध्यक्ष और महासचिव बोरिस बैन डेर वोड्स से मुलाकात कर उन तौर तरीकों पर चर्चा की थी जिनसे भारत एशिया में विश्व मुक्केबाजी सदस्यों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है। विश्व मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी के नजरिए से भारत काफी महत्वपूर्ण देश है और इसलिए हम विश्व मुक्केबाजी में BFI को शामिल कराना चाहते हैं। तो देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं देश के प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें। तो तन्वी, आपके पास क्या खबरें हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
Let's begin with Chennai. The Greater Chennai Corporation has plans to add 5 new biogas energy production centres. Nearly 1/3 of the 2,100 tons of wet waste generated in the city will be used for biogas energy production. Each plant will have a capacity of 100 tons and will generate 4,100 kilograms of biogas a day. The two plants have a combined capacity of 200 tons at Chetpit and Madhavaram. This will reduce the amount of waste going to landfills and serve as a revenue model for GCC, which charges Rs. 1.5 per kilogram of biogas as royalty and land rent for the biogas plant. The Corporation Commissioner J. Radhakrishnan said that the plan is to tie up with mid-sized star hotels to procure the biogas. In addition, there is a plan to scale up micro-composting and vermicomposting and ensure 100% wet waste segregation. If we talk about Bangalore, the premier mental health institute in Bangalore, NIMHANS, has bagged the Nelson Mandela Award for this year. The World Health Organization gives the award in recognition of individuals and institutions' contribution to health promotion. NIMHANS has completed its 70 years and is now internationally recognized as the postgraduate center in psychiatry. NIMHANS contributions can be witnessed in the district mental health program and telemedicine when mentally distressed and anxiety-ridden persons can call up mental health experts and seek assistance. It offers children mental health care and elderly well-being clinics. It also provides institutional care and community care. And if we go to Hyderabad, in Telangana, several parts have reeled under severe heat waves, while maximum temperatures have crossed 47 degrees Celsius in a few places. per the Telangana State Development and Planning Society, Bhimaram in Mancherial District and Kamanpur of Peddapalli District recorded a blistering 47.1 degrees Celsius during the past 24 hours. Over 20 places recorded over 46 degrees Celsius yesterday. Meanwhile, the IMD said that relief from the sweltering heat will only come next week when the southwest monsoon, which set in over Kerala, will reach Telangana. The Met officials said the monsoon will likely reach southern Telangana around 6th or 7th of June. So these were the updates from three cities, Hyderabad, Bangalore and Chennai. Now let's ask Devendra about Delhi, Mumbai and Kolkata.
Jitan, we Delhi se shuruaat karte hain. Delhi ke uprajyapal Vinay Kumar Saxena ne kaha hai ki rajdhani mein pani ki qillat ke baad हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं. लोग एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों की लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं. श्री सक्सेना ने पानी की कमी के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बताया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी खामियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रही है. दिल्ली में 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाने का वायदा करने वाली सरकार विफल साबित हो रही है. उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी गर्मी के मौसम में पानी की अधिक मांग के कारण इसकी कमी का सामना कर रही है. उन्होंने संकट की इस घड़ी में पड़ोस के भाजपा शासित राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग करने का आग्रह किया. दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी के लिए भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया. इस बीच भाजपा ने कल राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली के सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जल मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की. नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि 2013 में दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के लाभ में था और अब ये 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है. गर्मी के कारण देशभर में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. आग लगने की घटनाएं मुख्य रूप से एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक मीटर और तार, सूखी घास तथा कूड़े के डंपिंग स्थलों जैसी जगहों पर हो रही हैं. आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली अग्निशमन विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने लोगों से आग्रह किया कि यदि उन्हें किसी भी आग की घटना का सामना करना पड़ता है तो वे तुरंत परिसर छोड़ दें और अग्निशमन विभाग को फोन करें. उन्होंने कहा कि अगर लोग कुछ निवारक कदम उठाएं तो आग की घटनाओं में कमी आ सकती है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वाति मालीवाल उत्पीड़न मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निकटतम सहयोगी विभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली रोस्टर पीठ को स्थानांतरित कर दिया है. न्यायाधीश नवीन चावला ने निर्देश दिया कि इस मामले की शिकायतकर्ता राज्यसभा की सदस्य हैं. इस कारण मामले की सुनवाई सांसद और विधायक मामलों से संबंधित न्यायाधीश करेंगे. मौजूदा और पूर्व सांसद और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की रोस्टर पीठ के न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा आज इस मामले की सुनवाई कर सकती हैं. अपनी याचिका में विभव कुमार ने उच्च न्यायालय में गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने का आग्रह करते हुए कहा कि अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी मानकों का पालन नहीं किया है. सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. दिल्ली की एक अदालत ने बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल के मालिक और एक सह आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कुछ दिनों पहले इस अस्पताल में लगी भयानक आग में 7 बच्चों की मृत्यु हो गई थी. अस्पताल के मालिक नवीन खिची और ड्यूटी पर तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. इस बीच नवीन खिची ने एक जमानत याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 3 जून को होनी है. जांच में यह भी पता चला है कि अस्पताल के डॉक्टरों की योग्यता नवजात शिशुओं के उपचार करने की नहीं थी. और मुंबई का रुख करें तो मुंबई में सेंट्रल और हार्बर रेलवे लाइन पर मेगा ब्लॉक होने के कारण मुंबई विश्वविद्यालय ने आज होने वाली परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुसार परीक्षाएं अब बाद में होंगी. इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा कार्यक्रम में हुए बदलावों को नोट कर लेना चाहिए. रेलवे में चल रहे व्यापक सुधार के कारण परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और परिवहन चुनौतियों के बावजूद मुंबई विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों में परीक्षाएं आयोजित की. मेगा ब्लॉक के परिणाम स्वरूप मुंबई विश्वविद्यालय में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आज छुट्टी रहेगी. मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मॉनसून के मद्देनजर एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. नोडल एजेंसी के मुताबिक कंट्रोल रूम 24 घंटे काम करेगा. इस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से बृहन्मुंबई नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संगठन जैसे विभिन्न आपदा नियंत्रण संगठनों के साथ समन्वय किया जाएगा. नियंत्रण कक्ष 1 जून से 15 अक्टूबर तक काम करेगा. मुंबई के घाटकोपर बिलबोर्ड हादसे में पेट्रोल पंप पर गिरे होर्डिंग के मामले में इगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में क्राइम ब्रांच ने बीएमसी से मंजूरी प्राप्त इंजीनियर मनोज संघू को गिरफ्तार किया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त लखामी के अनुसार गौतम संघू ने 24 अप्रैल 2023 को एगो मीडिया को स्थिरता प्रमाण पत्र जारी किया था। प्रमाण पत्र में होर्डिंग का आकार 120x140 फीट बताया गया था। और कोलकाता चलते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के अंतर्गत आज उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों तथा कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। कुल 124 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। इसके अलावा बारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज ही उपचुनाव कराया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया में सीएपीएफ की 967 कंपनियां और 33,000 से अधिक राज्य पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अन्य चरणों की तरह ही सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। और अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज धूल भरी आंधी चलने या हो सकता है कि आंशिक बादल छाए रहें और कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन तापमान 44 डिग्री के आसपास जाएगा, यानी कि गर्मी अभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और जैसा कि तन्वी ने बताया कि मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जब तक मानसून नहीं आएगा तब तक गर्मी से स्थायी राहत नहीं मिलने वाली है। और 30 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दिल्ली में दर्ज किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, छिटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है, न्यूनतम 28 डिग्री रहा। और कोलकाता में भी आंशिक बादल छाए रहने और कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की संभावना है। यहां पर तापमान 31 और 27 डिग्री के बीच रहेगा। तो तन्वी, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु में टेम्परेचर कैसा रहेगा और किस तरह के मौसम की आज संभावना है?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 30 डिग्रीज एंड maximum will be around 40 degrees, so it's a little less than Delhi. Bengaluru and Hyderabad both are expected to have generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The minimum temperature for Bangalore was 23 degrees and maximum will be around 35 degrees. As far as Hyderabad is concerned, the temperature will hover between a minimum of 28 and a maximum of 40. So these sound pretty pleasant. And if we talk about this particular day, of course we'll be talking about what all happened in this day, on this particular day in history. But before that, let me just tell you that today is the Global Day of Parents and World Milk Day. I don't think we need a day to celebrate parents or to, you know, notice that what all they do for their children. But yes, today is the Global Day of Parents, designated by the United Nations General Assembly in 2012. Global Day of Parents emphasizes the vital role of parents in raising children. It acknowledges that the family bears the primary responsibility for nurturing and protecting children. I think all the children are grateful for their parents, no matter what they do, and they do everything for their children. So what do you have to say about that?
Definitely, jo mata pita hain, unke prati jis tarah ka unka tyag hota hai apne bachchon ke liye, apne family ke liye, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि किसी दिन को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये हर दिन इस तरह का भाव हमारे मन में होना चाहिए।
एब्सोल्युटली, इट्स अ सेल्फलेस कमिटमेंट एंड नो अदर पर्सन कैन डू दिस फॉर एनीवन एल्स। एंड टुडे इज वर्ल्ड मिल्क डे एज वेल। वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क। जनरली वी हैव हर्ड दैट चिल्ड्रन डोंट लाइक ड्रिंकिंग मिल्क, बट देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ मिल्क। मिल्क विच इज रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन एंड इवन फैट, एंड इज प्राइमरली सोर्स्ड फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। बट डू यू नो दैट वी ऑल्सो get milk from goats, sheep and even camels.
Right.
That is pretty expensive, but yes, that is all about World Milk Day. Let's talk about 1786, where Madras General Post Office started functioning.
जी, और 1874 में आज के दिन ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था।
इन 1916 लोकमान्य तिलक रोड फ्रीडम इज बाय बर्थ राइट एट अहमदनगर।
जी, 1930 में भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डक्कन क्वीन को बॉम्बे वीटी यानी विक्टोरिया टर्मिनल और पुणे के बीच शुरू किया गया था।
इन 1945 टाटा फंडामेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड।
अस्पृश्यता निरोधक यानी छुआछूत निरोधक कानून अस्तित्व में आया था भारत में आजादी के बाद। वर्ष था 1955 और 1964 में नया पैसा से नया शब्द हटाकर इसे अब पैसा कहा जाने लगा था, यानी उससे पहले एक पैसे को एक नया पैसा कहा जाता था और उसके बाद जब ये कानून आया, ये नियम आया, तब उसके बाद उसे एक पैसा कहा जाने लगा।
दैट वॉज अ स्ट्रेंज चेंज। इन 1959 नेशनल एरोनॉटिकल रिसर्च लैब सेट अप अंडर CSIR विद टेम्पररी ऑफिसर्स इन न्यू दिल्ली। In, and in 1972, Space Commission and Department of Space was set up. Indian Space Research Organization, ISRO, brought under the Department of Space, that is DOS.
जी, और 1979 में इसी दिन रोडेशिया में 90 साल बाद श्वेत लोगों के शासन का अंत हुआ था और घोषणा हुई थी कि अब देश को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाएगा। भारत और इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ था। आज ही के दिन वर्ष था 1992।
And in the same year, 1992 itself, Dr. Babasaheb Ambedkar Academy was established at Satara. In 1998, the Prasar Bharati Bill was introduced in the Lok Sabha to revive the Prasar Bharati Act 1990.
हवाई विश्वविद्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इसमें नर चूहे का प्रतिरूप विकसित हुआ था और नेपाल के शाही परिवार की नरेश वीरेंद्र विक्रम शाह सहित पत्नी और अन्य परिवारों की नृशंस हत्या के बाद युवराज दीपेंद्र द्वारा दी आत्महत्या का प्रयास, ज्ञानेंद्र कार्यवाहक नरेश बने थे और अप्पा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की 15वीं बार सफल चढ़ाई की थी। आज के दिन वर्ष था 2005। और अब आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं उन महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। और इस क्रम में सबसे पहले याद करते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास को, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी प्रसिद्धि फिल्म जगत में निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में रही। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन से शुरुआत की थी। बॉम्बे क्रॉनिकल में लंबे समय तक बतौर संवाददाता और फिल्म समीक्षक रहे। इनका स्तंभ द लास्ट पेज सबसे लंबा चलने वाले स्तंभों में गिना जाता है। इसके लिए उन्होंने 1941 से लिखना शुरू किया और 1986 तक लिखते रहे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कई पुस्तकें भी लिखी। ख्वाजा अहमद अब्बास की मुख्य फिल्मों की अगर हम बात करें तो नया संसार, नीचा नगर, आवारा, श्री 420, धरती के लाल, आज और कल और सात हिंदुस्तानी को हम याद कर सकते हैं। सात हिंदुस्तानी का एक गाना हम आपको सुनवाते हैं।
बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरें खाए तो दिल हमारा बढ़े, इस तरह जम के तूफान में रखो कदम के कदम चूमने को किनारा बढ़े, बढ़ के मंजिल का सुख चैन।
Today we are also remembering Neelam Sanjeeva Reddy on his death anniversary. He served as the 6th president of India from 1977 to 1982.
और अब नमन महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के नाविक चिमन सिंह यादव का। चिमन सिंह यादव ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। चिमन सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए भारतीय सेना के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान चिमन सिंह यादव को बंदी बना लिया गया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद उनकी रिहाई हुई और उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू।
टुडे वी आर आल्सो रिमेम्बरिंग Helen Keller. She was an American author, disability rights advocate, political activist and a lecturer. Well, everyone more or less knows her story that she lost her sight and her hearing when she was only 19 months old. But not everyone knows that after an education at both specialist and mainstream schools, Helen attended Radcliffe College of Harvard University and became the first deaf-blind person in the United States to earn a Bachelor of Arts degree. She was also a prolific author, writing 14 books and hundreds of speeches and essays on topics ranging from animals and even to Mahatma Gandhi. Her autobiography, The Story of My Life, was written in 1903, publicized her and her education and her life with her teacher, Anne Sullivan.
आज ही जन्मदिन है भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी का। 1 जून 1975 को हैदराबाद में जन्मी कर्णम ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने मजबूत हौसले और लगन से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे की शान को और बढ़ाया। मंच कोई भी हो, लेकिन जीत हर कीमत पर का इरादा रखने वाली इस वेटलिफ्टर की जिंदगी संघर्ष और कामयाबी की कहानी है। 2000 में सिडनी में हुए ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी ने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। मल्लेश्वरी को 1995 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा 1997 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
बार बार हाँ, बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो फल घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो।
So we have all heard this term, diamonds are a girl's best friend. And let me tell you that Marilyn Monroe said it once in her song. So this is a very famous song by Marilyn Monroe. She was an American actress and a model. In 1999, the American Film Institute ranked her as the 6th greatest female screen legend from the golden age of Hollywood. So let's hear this song and remember her.
There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. There may come a time when a hard-boiled employer thinks you're awful nice, but get that ice or else no dice. He's your guy when stocks are high, but beware when they start to descend.
It's also the birthday of every 90s favorite actor R. Madhavan, and we know him as Maddie. He's not just an actor, he's a writer, he's a director, producer, and we have seen him in Hindi and Tamil movies. So he has won various accolades. We have seen him in the movies Three Idiot, Rang De Basanti, Rehna Hai Tere Dil Mein, the Mani Ratnam's biopic Guru, and many, many more. So let's hear this song from his debut Hindi movie.
रहना है रहना है तेरे दिल में रहना है, बेकरार दिन है प्यासी रहना है, एक पल कहीं ना मुझको चैना है।
It's also the birthday of nobody else but Morgan Freeman. Born on this day in 1937, he throughout his career spanning 5 decades and multiple film genres, we know him as God. Yes, his voice is the one we recognize him with. So let's hear a few lines in his voice.
I am the master of my fate. I am the captain of my soul. I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged.
और आज ही जयंती है हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में से एक रही नरगिस दत्त की, जिनका वास्तविक नाम था फातिमा रशीद। नरगिस दत्त का जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था और उन्होंने अंतिम सांस मुंबई में 3 मई 1981 को ली। नरगिस मशहूर गायिका जद्दन बाई की पुत्री थी। कला नरगिस को विरासत मिली और 1935 में सिर्फ 6 साल की उम्र में नरगिस ने फिल्म तलाशी हक से अभिनय की शुरुआत कर दी थी। फिल्म मदर इंडिया में राधा की भूमिका के जरिए भारतीय नारी को एक नया और सशक्त रूप देने वाली नरगिस हिंदी सिनेमा की महानतम अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। उनकी ही फिल्म का एक गाना आपको सुनाते हैं।
So with this, we are ending this Aaj Savere, and with this, we are also giving credit to the entire team. The editor has been Manik Sharma. The anchors, you know, I'm Tanvi Khurana, and with me is Devendra Tripathi. The sneno was Anjali, and the production assistance has been given by Imran.
जी. So, और लगातार हमारे साथ बने रहिए. आज सवेरे को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट.
Thanks for tuning in. Have a superb day.
नमस्कार.